नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल माध्यम से मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु, ठाणे और पुणे के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने कोलकाता में डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल बुलाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई सूची तैयार करने को कहा। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू और 28 अगस्त से प्रारंभ होने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत 84 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भेजेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। भारत आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। सम्मेलन का विषय है बेहतर भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। उद्घाटन सत्र में इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। इस सत्र की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सम्मेलन में संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट, जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल साउथ की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। बांग्लादेश के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वहां हालात जल्द ही सामान्य होंगे ताकि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सकें।
बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बन गई है और हम उनके साथ काम करने के लिए, दोनों देशों के लोगों के साथ के हित में, उनके आकांक्षाओं के लिए काम करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं हिंदू, वो लोग सुरक्षित हों और उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाए।
इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। श्री यूनुस ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। भारत और जापान के रक्षा तथा विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में मंगलवार को होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हिस्सा लेंगे। जापान की ओर से रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और विदेश मंत्री योको कामिकावा बैठक में शामिल होंगे। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की पिछली दो बैठक 2019 में नई दिल्ली में तथा 2022 में टोक्यो में हो चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जापान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत आपसी सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें बेंगलुरु मेट्रो का तीसरा चरण, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और पुणे मेट्रो के पहले चरण का विस्तार शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब 21 शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा है जबकि 10 साल पहले यह केवल 5 शहरों में थी। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क लंबाई के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। एक रिपोर्ट।
बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना का तीसरा चरण 2029 तक शुरू होगा। इस चरण में लगभग 45 किलोमीटर मेट्रो लाइन जोड़ी जाएगी जिससे बेंगलुरु शहर के दक्षिणी हिस्से और आसपास के इलाकों में मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना का 29 किलोमीटर का गलियारा वर्ष 2029 तक आरंभ होगा। मेट्रो रेल परियोजना ठाणे के पश्चिम में 22 स्टेशनों के साथ बनाया जाएगा। पुणे मेट्रो के पहले चरण का विस्तार करने से स्वारगेट से कटराज अंडरग्राउंड लाइन तक सड़क यातायात की भीड़ को कम में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में बिहटा और पश्चिम बंगाल में बागडोगरा में सिविल एनक्लेव को भी मंजूरी दी है। इससे बागडोगरा और बिहटा हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने मंत्रालयों और विभागों में कई उच्चस्तरीय नियुक्तियों को मंजूरी दी है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। कोयला मंत्रालय में अपर सचिव नागराजु मद्दिराला अब वित्तीय सेवा विभाग के सचिव होंगे। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह रक्षा विभाग में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं। वे इस वर्ष 31 अक्टूबर को गिरिधर अरमाने का कार्यकाल पूरा होने के बाद रक्षा विभाग के सचिव का पदभार संभालेंगे। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए तीन चरण 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को तीन चरण में मतदान होगा। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी को इन चुनावों में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। कोलकाता में आरजेकर राजकीय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। आईएमए ने सुबह 6 बजे से ओपीडी और अन्य सामान्य सेवाएं बंद करने की अपील की है। संगठन ने इस मामले में न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय कानून की मांग की है। संगठन की अपील को देखते हुए इस हड़ताल में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हो रहे हैं। आईएमए ने कोलकाता के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की भी निंदा की है। इस अस्पताल में 9 अगस्त से डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन सूची 3 महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी 6,800 उम्मीदवारों की चयन सूची को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और ब्रजराज सिंह की पीठ ने 90 विशेष याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि नई चयन सूची से प्रभावित होने वाले सहायक शिक्षकों को मौजूदा शिक्षा सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं उन्हें रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में अक्षरा विद्यालय और कौशल विकास केंद्र का दौरा करेंगे। वे स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मुप्पा वारापू फाउंडेशन भी जाएंगे। श्री धनखड़ नेल्लोर के वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 23वें वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शामिल होंगे। सरकार नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों तक किसानों की पहुंच बनाने के लिए रेडियो पर एक कार्यक्रम किसानों की बात आरंभ करेगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्यक्रम सितंबर में शुरू होगा। आकाशवाणी के प्रति घंटा समाचार बुलेटिन के प्रसारण क्रम में संशोधन किया गया है। यह परिवर्तन आज मध्यरात्रि 12 बजे से बुलेटिन के साथ लागू होगा। पहले हिंदी समाचार बुलेटिन प्रसारित होंगे, उसके तुरंत बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार भी प्रसारित किए जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा कल से फिर शुरू हो गई। इस सेवा की शुरुआत पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंथुरई के बीच की गई थी। ये उत्तरी प्रांत जाफना के पास है। शिवगंगा नौका पर यह यात्री सेवा निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित है। इससे नागपट्टिनम और कांकेसंथुरई के बीच की दूरी लगभग 4 घंटे में तय की जा सकती है। आज तड़के उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में साबरमती एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह दुर्घटना देर रात हुई। दुर्घटना के समय यह ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। यह दुर्घटना इंजन के पत्थर से टकराने से हुई। रेलवे ने यात्रियों को अहमदाबाद पहुंचाने के लिए वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सतर्कता ब्यूरो और उत्तर प्रदेश पुलिस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में तेज वर्षा हुई है। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। सर्वाधिक 172 मिलीमीटर वर्षा करीमनगर जिले में दर्ज हुई। मौसम विभाग ने हैदराबाद और आसपास के जिलों में अगले 2 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। देश के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में अगले छह दिन तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और इसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मेघालय में 22 अगस्त तक तेज वर्षा हो सकती है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत से 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होंगे। ये पहला अवसर है जब सर्वाधिक 47 भारतीय एथलीट पहली बार इन खेलों में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस दल में 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्रशिक्षण मिला है। वहीं कई खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स से चुने गए हैं।
आप में से कई प्लेयर खेलो इंडिया से निकले हैं। तकरीबन 50 ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप स्कीम के लाभार्थी रहे हैं। आपको आपके जीवन में कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो या बेस्ट कोच रखना हो या जो भी संसाधन की आपको आवश्यकता रही और टॉप्स के द्वारा आपको उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि पैरालंपिक के खिलाड़ियों ने कहा है कि वे खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत के लिए पदक लाएंगे। टोक्यो में हुए पिछले पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते थे।
मेरा नाम अशोक मलिक है और मेरा गेम है पैरा पावर लिफ्टिंग। टॉप स्कीम से मैं 3-4 महीने से हूँ और जो कि मेरे को बहुत अच्छे से बेनिफिट मिल रहा है। टाइम टू टाइम मेरे को जो चीजें की रिक्वायरमेंट डाली थी मैंने वो टाइम टू टाइम मेरे को मिल रही है।
मैं कंचन लखानी इंटरनेशनल पैरा एथलीट और मैं जा रही हूँ पेरिस 2024 में पैरालंपिक्स में डिस्कस थ्रो में। तो बताना चाहूंगी कि पैरालंपिक्स गेम की तैयारी कुछ दिनों की या महीनों की नहीं होती है, सालों की खिलाड़ी की मेहनत होती है। तो सालों की मेहनत और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर हम आज पैरालंपिक के मुकाम तक पहुंचे हैं और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं।
आज मलयाली नववर्ष का पहला दिन है। मलयाली कैलेंडर में नववर्ष के पहले दिन को चिंगम कहा जाता है। इस अवसर पर राज्यभर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ चिंगम मास का स्वागत किया जाता है। चिंगम के पहले दिन लोग पारंपरिक पोशाकों और बड़ी संख्या में आज मंदिर पहुंचे और सबरीमाला तथा गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद निखिल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला लिखता है जम्मू कश्मीर में 3 और हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव, नतीजे 4 अक्टूबर को। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है घाटी में चुनावी मोड़, हरियाणा में भी वोट और 47 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं डल झील में तैरेंगे 3 मतदान केंद्र, 10 साल बाद लोकतांत्रिक परीक्षा। देशबंधु ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले को मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। पत्र लिखता है नवासी अफसरों के तबादले और तैनाती के आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की बातचीत को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है, दिया हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन। राजस्थान पत्रिका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ का यह बयान प्रमुखता से दिया है, भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पंजाब केसरी के कारोबार पन्ने की खबर है बाजार में तेजी से निवेश, शिक्षकों की संपत्ति 7.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। दैनिक जागरण के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने सभी अवधि के कर्ज पर 0.1% ब्याज बढ़ाया। वहीं पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 10 दल से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को हरी भूमि ने सचित्र प्रकाशित किया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल माध्यम से मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु, ठाणे और पुणे के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारतीय चिकित्सा संघ ने कोलकाता में डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल बुलाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई सूची तैयार करने को कहा। भारत श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू और 28 अगस्त से शुरू होने वाले पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत 84 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भेजेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।